Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2371-7117 and 2371-7106. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद निशित. नमस्कार श्रोताओं, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. श्रोताओं, आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज हम आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में सीधे शामिल करेंगे. व्यापार जगत, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं. 2331-4444, 2371-7117 और तीसरा नंबर है 2371-7106. इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. प्रश्नों के उत्तर देने और खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं बाजार विशेषज्ञ राजीव रंजन. नमस्कार राजीव जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी नमस्कार.
और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं निशित कुमार.
द हेडलाइंस: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज क्लोज वीक विथ लॉसेस ऑफ अराउंड 2.5%. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स ओवर 2.7%.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक इस सप्ताह लगभग 2.5% के नुकसान में रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए भारत और विदेश में नए अवसर सृजित करने के प्रयास कर रही है. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में 2.7% से अधिक साप्ताहिक वृद्धि हुई दर्ज.
एंड बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, हियर इज एन एडवाइजरी फ्रॉम आकाशवाणी. द व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस बाय द एक्सपर्ट्स इन दिस प्रोग्राम आर देयर ओन एंड नॉट दैट ऑफ आकाशवाणी. आकाशवाणी advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और अब हमारे आज के पहले श्रोता प्रियांशु जुड़ गए हैं दिल्ली से. प्रियांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है. सवाल पूछिए.
नमस्कार मैम.
जी नमस्कार.
मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा लेबल प्रिंटिंग का बिजनेस है और मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें एक्सपोर्ट करने की क्या अपॉर्चुनिटीज है और उनको मैं कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ.
जी राजीव जी.
जी, अब इसका सीधा सीधा ये तो एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी आपको कहीं टैप करनी चाहिए. इसका सीधा सीधा बाजार से कोई संबंध नहीं है, शेयर बाजार से मतलब.
जी बिल्कुल. सो इसमें रिसर्च की जरूरत होगी.
जी हाँ, इन्हें कंसल्टेंसी जो इस तरह की सेवाओं के लिए देते हैं उनसे संपर्क करना होगा.
और अब सेंसेक्स का क्या प्रदर्शन रहा इस सप्ताह, उस पर एक नजर डाल लेते हैं. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में इस सप्ताह गिरावट का रुख रहा. विदेशी फंडों का भारत से प्रवाह जारी रहने, कंपनी आमदनियों में वृद्धि कम रहने, भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते में विलंब और अमरीका के टैरिफ को लेकर बदलते परिवेश का दबाव बाजार की धारणा पर पड़ा. सभी क्षेत्रीय सूचकांक इस सप्ताह घाटे में रहे. सबसे खराब प्रदर्शन रियल्टी क्षेत्र का था. अन्य क्षेत्रों की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकम्युनिकेशन और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्षेत्र 5% से अधिक की गिरावट में रहे. सप्ताह के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 2.4% से अधिक गिरावट दर्ज करते हुए 81,538 पर बंद हुआ. दूसरी ओर एनएसई निफ्टी 50 2.5% की गिरावट से 25,049 पर बंद हुआ. इस बीच बंबई शेयर बाजार के विस्तारित बाजार में गिरावट और भी तीव्र थी। सप्ताह के दौरान मिड कैप सूचकांक 4.2% की भारी गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक लगभग 5.8% लुढ़क गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपए में डॉलर के मुकाबले 110 पैसे की कुल गिरावट आई और वह 91.96 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ।
And our next caller is Jay Bhagwan from Delhi.
Hello.
जी 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 आपकी आवाज। हाँ सवाल पूछें अपना।
ये मानव भारत जो है भारत है या हिंदुस्तान है? ये भारत में इंग्लिश क्या बोलते लोग?
आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है जय भगवान जी। या तो
आप मानव भारत जो है इंग्लिश में क्या बोलता है जो हिंदुस्तान है? तो
स्पष्ट नहीं है इनका सवाल। अगले कॉलर की ओर चलते हैं। दिल्ली से ही अमित है हमारे साथ। अमित जी स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। जी अमित जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाल पूछिए।
हाँ नमस्कार मैडम, सभी को मार्केट बंदर टीम को।
जी नमस्कार
राजीव रंजन सर से सवाल ये है सर कि क्या अगले हफ्ते भी मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी बनी रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक जैसे देशीय कोई कारण किन कारकों पे ध्यान रखना जरूरी है सर? और बजट से संबंधित कुछ न्यूज है क्या सर? धन्यवाद सर।
जी देखिए अनिश्चितताएं जिस तरह की हैं वो आपके मन पर इस समय हावी हैं और बीते हफ्ते में बाजार जिस तरह से गिरा है तो बाजार कभी एक रेखा में नहीं चलता, एक सीधी रेखा नहीं होती है कि पिछले हफ्ते अगर बाजार गिरा है तो अगले हफ्ते भी गिरेगा ही, या आपके पास अभी कोई इस तरह की नई सूचना या नया ट्रिगर बाजार के सामने जब तक नहीं आएगा तब तक एक स्पष्ट दिशा लेना मुश्किल रहेगा। बाजार ऊपरी स्तरों से काफी गिर चुका है इसलिए यहां पर 25,000 के आसपास निफ्टी को एक सहारा मिलने की उम्मीद है, लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कुछ ऐसी खबरें जो बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की ओर इशारा करें, क्योंकि आप पश्चिमी एशिया में क्या हो रहा है अभी बहुत कुछ हमारे सामने स्पष्ट नहीं है, वहां किस तरह से स्थितियां आगे बनेंगी, या अगर आप जियोपॉलिटिकली दूसरी चीजों को देखें, रूस यूक्रेन युद्ध नए सिरे से अगर तीव्रता की ओर बढ़ता हुआ दिखता है, ये सारी स्थितियां ऐसी हैं। अभी हमने हाल में एक खबर देखी कि फ्रांस ने एक तेल वाहक जहाज को कब्जा किया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रूस के लिए तेल का आवागमन कर रहा था। ये सारी स्थितियां जो हैं वो जियोपॉलिटिकली कोई बहुत अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रही हैं, काफी अनिश्चितताओं के बीच हमारा बाजार चल रहा है तो नए संकेतों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ चूंकि ऊपरी स्तरों से हम काफी बाजार को नीचे आते हुए देख चुके हैं इसलिए यहां इन स्तरों पर एक सहारा मिलने की उम्मीद रहेगी। और घरेलू बाजार में अगला बड़ा ट्रिगर जो होगा वो जैसा आपने बजट का जिक्र किया, बजट के बारे में क्या है वो तो जब लाल लिहाफ में लिपटे टैब से जब वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन आशाएं सबको रहती हैं और ये आशा जरूर करनी चाहिए कि इस बजट से भी भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के कई नए उपाय सामने निकलेंगे।
नेक्स्ट कॉलर इज मनोज फ्रॉम दिल्ली। मनोज
सर मेरा क्वेश्चन ये राजीव सर से ये है कि ये अपकमिंग बजट में ये इनका क्या ओपिनियन है कि टैक्सेशन एंगल में इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को क्या टैक्स इंसेंटिव दे सकते हैं टू जंप स्टार्ट द इकोनॉमी? बट आई वुड लाइक हिज व्यूज आल्सो।
जी देखिए टैक्सेशन के मामले में आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में इतनी बड़ी राहत इस साल मतलब 2025 में या फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मिल चुकी है जिसके आगे बहुत ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं है सरकार के सामने या लोगों के सामने भी कि वो क्या बोलें कि अब और कितना चाहिए। तो इंडिविजुअल टैक्स के मामले में इंडिविजुअल इनकम टैक्स के मामले में अब 12 लाख रुपए की जो लिमिट है 1 लाख रुपए महीने उसके आगे अभी तुरंत कोई अपेक्षा बनती नहीं है। अगर सरकार के मन में कुछ और हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सामान्य रूप से इसके आगे अभी तुरंत कोई नई अपेक्षा करना जो है वो बहुत उचित बात नहीं है। दूसरे जीएसटी में इतनी बड़ी रियायतें दी जा चुकी हैं, काफी बड़ा सुधार हुआ जीएसटी 2.0 इसको कहा गया, इसके आगे गुंजाइश कहाँ बनती है? मैं एमएसएमई सेक्टर के लिए अगर सरकार कुछ विशेष रूप से सोचती है तो वहां पर कुछ गुंजाइश बन सकती है, और साथ में चूंकि बहुत सारे एमएसएमई जो हैं वो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में काम नहीं करते हैं, सरकार ने इससे पहले कॉरपोरेट इनकम टैक्स में भी काफी नरमी दी थी, लेकिन ये जो एमएसएमईज हैं जो पार्टनरशिप फर्म्स की तरह से काम करते हैं या प्रोप्राइटरी फर्म्स की तरह से काम करते हैं, क्या उनके लिए सरकार कुछ आगे और सोचेगी, कुछ उनके लिए टैक्सेशन में या उनके लिए और किसी तरह से अगर उन्हें राहत देने के उपाय करे? सरकार ने कई बार ये जरूर किया है कि उन्हें आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराने का काम किया है या उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं बैंकों के माध्यम से, लेकिन सीधे उनको टैक्सेशन में कम से कम इतनी राहत मिले कि वो जो कॉरपोरेट वर्ल्ड को जो राहत मिल रही है उससे उनको बराबरी हो, इस दिशा में अगर सरकार कुछ करती है तो वो जरूर एमएसएमई को बूस्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए काफी अच्छा कदम होगा।
और आइए अब चले दिल्ली से नवी मुंबई, जहां से जितेंद्र है हमारे अगले कॉलर। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है मार्केट मंच में, सवाल पूछें।
हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल था ये डिविडेंड जो लाभांश कंपनियां देती है, तो मैं देखता हूँ कि मैंने पढ़ा था उसमें कि जिस प्रोमोटर के ज्यादा शेयर है तो लाभांश तो उसको मिलेगा एक फंडा, और छोटे छोटे रिटेलर जैसे हमारे वो भी उनको भी लाभांश मिला, तो इसके पीछे उनका कॉन्सेप्ट क्या रहता है लाभांश देने, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे शेयर लेना है एज अ रिटेलर, तो लाभांश वाले शेयर में ज्यादा लूँ या दूसरे प्रकार के शेयर जो मेरे बकेट में रखूँ, इस बारे में जरा जानकारी दे सकते हो सर?
जी देखिए, अब ये काफी कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप जो निवेश कर रहे हैं उससे आप क्या पाना चाहते हैं, क्या आप उससे रेगुलर इनकम पाना चाहते हैं या आपकी इच्छा ये है कि वो एक तय समय में जैसे 5 साल बाद 7 साल बाद 10 साल बाद वो आपके लिए एक बड़ा कैपिटल, एक बड़ी पूंजी इकट्ठा करके दे। तो अगर आप बड़ी पूंजी की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि मुझे 5 साल बाद बड़ा पैसा बनकर सामने आए, तो आपको फिर लाभांश के पीछे उतना बहुत नहीं सोचना चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि आपके पास आपने जो भी निवेश किया है उससे नियमित रूप से हर महीने नहीं भी तो समय समय पर कुछ पैसे आते रहें, तो फिर उसके लिए डिविडेंड ऑप्शन बेहतर रहता है।
आइए अब चलते हैं एक खबर की ओर, बहुत ही उत्साहजनक खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भारत और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कई देशों के साथ व्यापार और आवागमन समझौते कर रहा है, जिससे देश के कुशल युवाओं के लिए अनेक अवसर सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से 18वें राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये कहा।
भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है, और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर,
हेलो।
हेलो,
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
मेरा सवाल है, अभी ये फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट है, तो इसमें शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन जो होता है वो एग्जम्पशन के लिए इंक्लूड होगा क्या?
जी देखिए, कैपिटल गेन तो आपको अलग से देना होगा, उसका अलग हेडर होगा। तो अगर कैपिटल गेन को मिला करके भी आपकी आमदनी 12 लाख रुपए के अंदर रहती है, फिर भी कैपिटल गेन वाले हिस्से पर आपको अलग से टैक्स देना होगा। लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इनकम के अंदर ही जोड़ा जाता है, वैसे स्थिति में शायद वो हिस्सा जो है वो आपका, चूंकि आपकी वो बेसिक इनकम में जोड़ा, अदर इनकम के तौर पर जोड़ा जाएगा, इसलिए शायद वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप एक बार अपनी एग्जैक्ट जो भी आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी आपके बन रहे होंगे उनको दिखा करके एक सीए से परामर्श इस पर लें।
और अब भारत में विदेशी निवेश को लेकर कुछ आंकड़े सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत में वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 73% बढ़कर 47 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ये वृद्धि उन नीतियों के कारण हुई है जिनका उद्देश्य देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना तथा सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में भारी निवेश करना है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की ओर से जारी वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले वर्ष डेटा सेंटर निवेश के शीर्ष 10 प्रमुख गंतव्यों में से एक था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डेटा सेंटर्स में विदेशी निवेश चंद देशों में केंद्रित है।
राजीव, वुड लाइक टू हैव योर से योर ओपिनियन ऑन दिस। The FDI, as per the UN report, says that it has surged by 73% to $47 billion. And as Sunuji was mentioning, that major investments have been done in data centers, and there are more to come. We recently heard Union IT Minister Ashwini Vaishnaw say in Davos that India is working big time to scale up capabilities in AI, that is artificial intelligence, and he very nicely explained the five-layered theory of how AI works. And in that five-layered, one important component was the data center. And he said that data centers are coming up big, and big investments are coming in this. How do you see this?
जी, निश्चित रूप से ये जो FDI आ रहा है और वो एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के विदेशी निवेशकों के भरोसे को दिखाता है कि बेशक शेयर बाजार में हमें लगातार जो FII की बिकवाली या FPI जो हम कहते हैं उनकी लगातार बिकवाली चल रही है, उससे कई बार शायद ये अंदेशा हो सकता है कि क्या विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार को लेकर के या भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के कम हो रहा है। लेकिन FDI के आंकड़े इस बात को साफ तौर पर नकार देते हैं। यानी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है, FDI ध्यान दीजिए, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल है। वो भारत में निवेश करके कोई उद्यम स्थापित करके वहां पर सालों साल कारोबार चला करके फिर उसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं। और FPI या जिसको FII आमतौर पर लोग कहते रहे हैं, वो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना चाहते हैं। उनका विजन बहुत शॉर्ट टर्म होता है कई बार, और वो बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से अपने फैसले लेते हैं। तो FII के तौर पर अगर आप देखें तो भारतीय बाजार में अभी उन्हें अनिश्चितता दिख रही है, लेकिन अगर आप FDI के तौर पर देखें कि FDI करने वाले निवेशक क्या देख रहे हैं भारत में, तो वो यहां की आने वाले दशकों में जो काफी बड़ी संभावनाएं हैं, जिसमें भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ता दिख रहा है अगले कुछ वर्षों के अंदर ही, उन संभावनाओं को देख करके लोग यहां आकर्षित हो रहे हैं और एक अपना भरोसा जता रहे हैं। AI और डेटा सेंटर, ये निश्चित रूप से काफी उभरता हुआ एक क्षेत्र बन रहा है। और डेटा सेंटर को आप AI के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से देखिए।
इनफैक्ट AI एक्सेलरेटर्स 5 देशों में स्थापित करने की बात हुई दावोस में, उसमें एक भारत भी है। सो ये हमारे देश में रोजगार सृजन के लिए भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा।
जी, और एक जो ये धारणा बन रही है कि क्या भारत AI के क्षेत्र में पीछे रह गया है, तो अभी एक रिपोर्ट आई जिसने बताया कि अगर हम AI के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रमुख देशों की गिनती करें तो भारत तीसरे स्थान पर है।
यस,
तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम पीछे छूट रहे हैं। लेकिन हाँ, शायद ये जरूर है कि जो चीजें लोगों के जुबान पे चढ़ जाती हैं, एकदम सामने से दिखती हैं, जिसको आप AI की दुनिया के आप गूगल की तरह से समझें, यानी अगर आप ChatGPT को देखें, उसके मुकाबले चीन ने अगर DeepSeek बना लिया, उसकी बहुत चर्चा हो गई, लेकिन भारत की IT इंडस्ट्री भी AI के सेक्टर में काफी अपना काम कर रही है, काफी अपना होमवर्क कर रही है और अपनी तैयारी कर रही है, तो उसके नतीजे सामने आएंगे।
Right, right. And we have to, in fact, talking of AI, we have to move much beyond the LLM models, as we say. And the Honorable Minister also said this. You just mentioned that India is not lagging far behind the other developed countries so far as AI is concerned. And we are positioned mostly at the third rank, probably leading a US university in its study. And in its research also said that India is almost positioned on the third spot so far as AI is concerned. But yes, the Minister also mentioned that we have to move beyond and further than the LLMs, which mostly you talked about the GPT, ChatGPT and all. It's mostly the LLM model, and in the coming times much advanced and much more kind of complex structures or modules will be required to provide to the industry and to the citizens alike. And moving on to the next story, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, has arrived in New Delhi on her official visit to India this afternoon. In a social media post, the Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said that her visit will explore the next phase of India and the European Union's strategic partnership. He added that India and the EU share a partnership rooted in mutual trust and shared values. She will be the chief guest along with the President of the European Council, Antonio Luis Santos da Costa, at Republic Day celebrations on Monday. Both the leaders will also co-chair the 16th India-EU summit on the 27th of this month.
क्या कहेंगे आप, इन्होंने भी कहा है उर्सुला वॉन डर लेन ने कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, और पीयूष गोयल जी ने भी कहा है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये भारत के लिए डील?
बहुत महत्वपूर्ण है और यूरोप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. यूरोप को भी भारत जैसे एक बड़े और उभरते हुए बाजार में एक तरह से कहा जाए आसान प्रवेश मिलेगा, और हमारे लिए भी वही चीज है, हमारे लिए भी उसी तरह के अवसर हैं. और पिछली भी एक चर्चा में मैंने कहा था कि यूरोप और भारत दोनों को ये बात समझ में आ रही है. यूरोप भी अमेरिका को अपना बहुत एक विश्वस्त सहयोगी साझेदार मान करके, दोस्त मान करके अभी तक चलता रहा है, और भारत ने भी अमेरिका को एक दोस्त की तरह से देखा. लेकिन दोनों तरफ कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि आपसी संबंध हमें बढ़ाने होंगे.
नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल. शंकर जी,
गुड इवनिंग सर. सर, दोज़ हू हैव मिस्ड द गोल्ड ट्रेन, गोल्ड रश, इन्वेस्टर्स लाइक अस, स्मॉल इन्वेस्टर, व्हाट इज योर एडवाइस टू देम इन द वेक ऑफ व्हाट हैड हैपेंड आफ्टर कोविड वायरस? एवरीथिंग बाउंस बैक वेरी वेल नाउ विल द ट्रंप वायरस, आफ्टर द ट्रंप वायरस एवरीथिंग विल बी बाउंसिंग बैक इन द सिमिलर वे, एंड शुड वी बी इन्वेस्टिंग अगेन मोर इन टू दिस निफ्टी और लार्ज कैप और मिड कैप और म्यूचुअल फंड? व्हाट इज योर एडवाइस सर टू स्मॉल इन्वेस्टर लाइक अस हु हैव मिस्ड द गोल्ड रश? थैंक यू.
जी, अगर एक ट्रेन चल पड़ी है, रफ्तार पकड़ चुकी है, उसको दौड़ते भागते हुए पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इस समय सोने में काफी ज्यादा तेजी हो गई है, इसी तरह चांदी में भी काफी तेजी हो गई है. उस तेजी को अगर आप दौड़ भाग करके पकड़ना चाहेंगे तो उसमें दुर्घटना हो सकती है. होगी या नहीं होगी मुझे नहीं मालूम. आज अगर 3,30,000-40,000 के बीच में चांदी है, कल को वो 4,00,000 की हो जाए, मुझे नहीं मालूम. लेकिन क्या वो यहां से घट करके 2,50,000 की हो सकती है, कभी 2,00,000 की भी हो सकती है, वो भी संभावना वैसी ही रहेगी. क्या आप उस तरह के उतार चढ़ाव में कोई अनुमान लगाना, स्पेकुलेट करना, आप अपने मतलब गाढ़ी कमाई जो है आपकी मेहनत की, आप उस पैसे से क्या वो स्पेकुलेशन करना चाहेंगे, वो आपका चॉइस है. मैं तो कहूंगा कि भागती हुई ट्रेन को पकड़ने की जरूरत नहीं है. अपनी अर्थव्यवस्था पर भरोसा कीजिए और उसके हिसाब से आप एसेट एलोकेशन करके इक्विटी, डेट, आप अगर थोड़ा सा एक्सपोजर इसमें रखना भी चाहते हैं तो आप मल्टी एसेट फंड्स होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत हिस्सा सोने चांदी में निवेश किया जाता है, आप उन फंड्स के माध्यम से थोड़ा एक्सपोजर लेकर के रखना चाहें तो वो जरूर एक रास्ता रहता है.
तो रफली कितना एक्सपोजर, कितना परसेंट पोर्टफोलियो का?
देखिए, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है. लेकिन आमतौर पर 5%, 10%, 15% इस तरह से किसी की अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्या है, वो कितना रिस्क लेना चाहता है, इसके हिसाब से कहा जाता है. और जिसने भी सोने में पहले से कुछ निवेश कर रखा है उसका एक्सपोजर उसके एसेट एलोकेशन से अभी ज्यादा हो चुका होगा, तो नया निवेश अभी नहीं करना चाहिए.
तो आपने बड़े दार्शनिक रूप से बताया कि कॉशियस रहें.
जरूर
सर. केशव है दिल्ली से हमारे अगले कॉलर. केशव जी, आपका स्वागत, सवाल पूछें.
हेलो, नमस्कार जी.
नमस्कार.
मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, नमस्कार, कि अगर बैंक के द्वारा बैंक की गलती से टीडीएस कट गया तो उसमें हमें क्या बैंक को बोलना चाहिए कि क्या करना चाहिए? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमने एक एफडी ब्रेक करी थी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 4,00,000 की थी, उसमें ज्यादा इसमें टैक्स नहीं बनता था, तो इसमें बैंक ने हमारा टीडीएस काट लिया तो 12,00,000 तक तो छूट है, तो ये 4,00,000 में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 7%, 7.5% के सब्सिडी?
जी, अब देखिए, बैंक से एक बार बात करके देखिए, अगर वो उसे रिवर्स कर सकते हैं, अगर आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि भाई ये गलती उन्होंने कर ली है, अगर वो उसको रिवर्स कर पाए. लेकिन शायद बैंक के लिए भी वो रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल होगा. तो एक दूसरा तरीका फिर ये बनता है कि साल के आखिर में आप अपना रिटर्न दाखिल करें और उस टीडीएस को आप वापस आयकर विभाग से ले सकते हैं, रिटर्न फाइल करके रिफंड ले सकते हैं.
Moving on to the U.S. markets now, the major U.S. indices ended yesterday's session on a mixed note. The Dow Jones Industrial Average dipped 0.6%, while the Nasdaq Composite Index rose 0.3%, and the S&P 500 ended nearly unchanged with a positive bias. Wall Street benchmarks had rebounced over the last two sessions following Tuesday's sharp sell-off, supported by news of easing trade tensions and reduced geopolitical risks. However, all the three major indices wrapped up the truncated week with losses. The Dow fell over 0.5%, the S&P 500 lost almost 0.4%, and the Nasdaq slipped nearly 0.1%. Looking ahead, investors will closely watch quarterly results from several of the Magnificent Seven companies scheduled for release in the coming week. Rajiv, we see the U.S. indices also kind of having a seesaw kind of effect. You know, one day it goes up, the other day mostly, you know, with Mr. Trump's statements happening, you know, off and on kind of thing happening, off today, on tomorrow, that kind of thing. The same thing is, but when we see the sustained kind of selling of the FIIs and FPIs in the Indian markets, so this kind of a pattern that we have been witnessing for the past month or so. Of course, it's a very obvious question, and most of the listeners would want this answer. Would this be sustaining more and more now? Have you bottomed out?
क्या भारतीय बाजार bottom out हो गया है? ये कहना अभी मुश्किल है. लेकिन जैसा मैंने पिछले एक सवाल में कहा कि 25,000 के निफ्टी के आसपास एक psychological support भी बनता है. काफी सारे अगर आप valuation के लिहाज से देखें या अगर आप technical parameters पे देखें, तो यहाँ पे एक support बनता है. लेकिन क्या ये अंतिम बॉटम है, इसके नीचे बाजार नहीं जाएगा, इसकी भविष्यवाणी मैं तो नहीं कर सकता.
ओके, एंड मूविंग टू ऑयल नाउ, द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सेटल अराउंड 3% हायर यस्टरडे आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रैचेटेड अप प्रेशर ऑन ईरान इम्पोजिंग मोर सैंक्शंस ऑन वेसल्स ट्रांसपोर्टिंग इट्स ऑयल. बोथ द बेंचमार्क्स notched weekly gains of over 2.7%. Yesterday, the U.S. Treasury Department said it had imposed sanctions on 9 shadow fleet vessels and the respective owners or management firms, which have collectively transported hundreds of millions of dollars worth of Iranian oil and petroleum products to foreign markets. This move was aimed at escalating pressure on Iran over the recent killings of protesters and the complete shutdown of internet access to conceal its crackdown. On Friday, the Brent crude futures surged over 2.8% to settle at $65.88 per barrel, while the WTI crude futures climbed 2.9% to close at $61.07 per barrel.
लेते हैं अगली खबर. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है. एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरबीआई 30 जनवरी को 25,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए 90 दिनों का परिवर्तनीय रेपो दर वीआरआर संचालन करेगा. वीआरआर एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बैंक नीलामी के जरिए अल्पकालिक निधि उधार लेते हैं. इसमें पहले से निर्धारित होने के बजाय ब्याज दर बाजार की बोलियों द्वारा निर्धारित की जाती है. आरबीआई ने घोषणा की है कि वह 4 फरवरी को 3 साल की अवधि के लिए 10 अरब डॉलर की डॉलर रुपए की खरीद बिक्री अदला बदली नीलामी आयोजित करेगा. पहली नीलामी 5 फरवरी को जबकि दूसरी नीलामी 12 फरवरी को निर्धारित है.
And still on to the RBI, the Reserve Bank of India has said that the consolidated gross fiscal deficit of Indian states has increased to 3.3% of the gross domestic product GDP in 2024-25. In a report titled State Finances, a Study of Budgets of 2025-26 that was released yesterday, RBI has said that consolidated outstanding liabilities of states remain elevated in the post-pandemic period, with a budget estimate of 29.2% of the GDP at the end of March 2026. The reports add that the thrust on capital expenditure was sustained, as capital expenditure remained steady at 2.7% of the GDP in 2023-24 and 2024-25, and is budgeted at 3.2% of the GDP in 2025-26.
Rajiv ji, aane ke liye market mantra mein aur hamare shrotaon ko bahumulya jankari dene ke liye aapka bahut bahut dhanyawad.
Ji, namaskar, bahut dhanyawad.
Thank you, Rajiv. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices close weak with losses of around 2.5%. Prime Minister Narendra Modi says government is making efforts to create new opportunities for youth in India and abroad, and the global crude oil prices log weekly gains over 2.7%. And that's all in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Market Center.